शांति। आज से 2011 की अव्यक्त मुरलिया चालू कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रश्न है मुरली का इतना महत्व क्यों बताया गया है। मनी भाई मुरली का इतना महत्व क्यों बताया गया है। दिनेश भाई
ये भगवान की मुरली है, भगवान के महावाक्य हैं।
भगवान के महावाक्य हैं और भगवान के महावाक्य हैं और अम्मा बाबा को मुरली से प्यार है इसलिए और क्यों?
क्योंकि आत्मा सत्युग से लेकर अंत तक कलयुग के अंत तक जो उसकी ओरिजिनल संकल्प थे उसकी जो शक्ति है वो खत्म होगी। उस शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से उस सत्यम शिवम सुंदरम को अवतरित होना पड़ता है।
मुरली सत्य वाक्य है। अभी तक आत्मा ने जो कुछ सुना है
सब झूठी।
वो कैसा था? झूठ,
झूठी माया, झूठा सब संसार।
तो आत्मा ने अब तक जो भी सुना, मनुष्य से सुना, शास्त्रों से सुना, उसमें सत्य था या नहीं ये तो पता नहीं, परंतु उससे आत्मा का पतन ही हुआ है, आत्मा नीचे ही गिर दी गई है। इसलिए मुरली का महत्व है। और क्यों महत्व है? इधर से माइक दे दो,
भगवान को जानना पहचानना उसके साथ
संपर्क करना, बिना कॉर्ड वाला माइक,
तो उसका आधार एक मूल्य ही है।
और मुरली क्या करती है उसका महत्व अलग। ब्रह्मा का मुरली से प्यार क्यों है? भगवान के महावाक्य है और
भगवान के अंदर उससे निकला हुआ वो संगीत है जो सोई हुई चेतना को जागृत करता है।
और भगवान के अंदर से निकला हुआ संगीत, भगवान के मुख से निकला हुआ सत्य, और परंतु यदि हम उसको उसका चिंतन नहीं करते, उस पर सोचते नहीं है, उस पर मन ठहरता नहीं है, तो वो कितना भी सुनते रहो उसका कोई प्रभाव नहीं। व्यक्ति तीन रीति से बड़ा होता है, एक तो उम्र से, एक अध्यात्म में एज ऑफ नॉलेज, और तीसरा अनुभव। हो सकता है किसी की उम्र बहुत ज्यादा है तो उनके पास एक तो एक्सपीरियंस तो है ही जीवन का, इसलिए हम उनसे हमेशा सीखते हैं। दूसरा वो लोग होते हैं कि जिनकी स्पिरिचुअलिटी की एज कितनी है, ज्ञान में कब आए, 50 साल, 40 साल, 10 साल, उससे भी हम सीखते हैं। और तीसरा है उनके पास अनुभव है। कौन सा अनुभव? अध्यात्म का अनुभव, प्रभु प्रेम का अनुभव, अशरीरी अवस्थाओं का अनुभव। तो वो एक सबसे पहला जो है, हो सकता है उम्र बहुत बढ़ गई परंतु अनुभव नहीं लिया जीवन का। उम्र बढ़ती जा रही है परंतु जो जीवन से सीखना था, जितना सीखना था उतना नहीं सीखा। वही वही गलती बार बार रिपीट होती रही रहे जीवन में। एक गलती की, फिर की, फिर की, फिर वही 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 सेम 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 रिपीट गलती, बार बार धोखा। पहले किसी पर विश्वास किया, फिर धोखा, फिर विश्वास किया, फिर धोखा। अर्थात जीवन से हमने कुछ भी नहीं सीखा। एक वो कैटेगरी है। दूसरा जिसमें ज्ञान की एज कितनी है, ज्ञान की एज किसी की होगी 40 साल, 50 साल, पर फिर भी अभी भी व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना। ब्रह्मा व्योजन की एक परिभाषा है क्या, आंखों से शुद्ध देखना या स्वीकार करना, कानों से हम क्या स्वीकार करते हैं और मुख से क्या स्वीकार करते हैं या बोलते हैं। कानों से यदि व्यर्थ सुनते हैं तो वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है। यदि इन आंखों से अपवित्र दृश्य देखते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, मोबाइल, यूट्यूब, तो वो क्या खा रहे, नॉन वेज, क्या खा रहे, मांसाहारी भोजन। यदि अपवित्र वचन हमारे मुख से निकलते हैं तो भी हम क्या ले रहे, शुद्ध भोजन नहीं ले रहे। एक तो स्थूल मुख से जो लिया जाता है, एक आंखों से जो लिया जाता है, और कानों से जो लिया जाता है। अगर ये तीनों अपवित्र है तो उसे ब्रह्मा भोजन नहीं कहेंगे। तो प्रश्न था, मुरली का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि बाप का प्यार मुरली से है। यदि हमें बाप से प्यार है तो बाप की प्रिय वस्तु मुरली से भी उतना ही प्यार होना चाहिए। आज्ञाकारी बच्चे किसे कहा जाता है? आज्ञाकारी बच्चों की परिभाषा, माइक सबके हाथ में होना चाहिए। कितने, दो ही माइक है कि और भी है? कल तो तीन थे पीछे। आज्ञाकारी किसको कहेंगे? आज की मुरली में बाबा ने जो कहा वो किया, ये इस मुरली में दिया हुआ है, जो मुरली में आया और वो तुरंत करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। मुरली में आया, ये करो, वो किया। आज सुबह की साकार मुरली, बाप को फॉलो करो, मैं निराकार हूं, मुझे फॉलो करो। तो ये क्या है? आज्ञा, आज्ञा आई और तुरंत उसको पालन करना। फिर ये नहीं सोचना, हाँ चिंतन करना अलग बात है, पर जब निश्चय है संपूर्ण कि यही संपूर्ण सत्य है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम क्या है? अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, वो बैठ के सोचता थोड़ी है कि राइट टर्न बोला है, राइट टर्न करना है कि नहीं करना है। नीचे ये कुछ दरी बिछा दो,
गाड़ी से पीछे करो
और थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सामने आ जाओ, बस ठीक है, इधर रख सकते जितने बैठ सकते, नीचे तो कम ही बैठेंगे। आज्ञाकारी अर्थात, आज्ञा अर्थात आज्ञा, फरमान, ऑर्डर। ये कैमरा को इधर कर दो या पीछे कर दो, तो उधर एक बाजू में। आज्ञा अर्थात आदेश,
आदेश, ऑर्डर,
ऑर्डर,
फतवा।
आज्ञाकारी अर्थात ओबीडियंट,
ओबीडियंट।
जो प्रतिदिन मुरली में सुने हुए महावाक्य को जीवन में उतारता है, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, यही वास्तविक आज्ञाकारी बच्चा है। अगला प्रश्न, ये मुरली है 18 जनवरी 2011 की, ये शांतिवन में चली है 18 जनवरी 2022 में, तो ये तीसरी बार हम रिवाइज कर रहे हैं, और एक बार ये मुरली ऑलरेडी इधर ही शायद किसी ने रिवाइज की है। 18 जनवरी का दिन विशेष क्यों है? जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठने आ जाए। 18 जनवरी, 18 शब्द का अर्थ क्या क्या है? 18 शब्द
आज्ञाकारी अर्थात टेप रिकॉर्डर,
18 कर दिया तो टेप रिकॉर्डर, जैसा आज्ञाकारी अर्थात कैमरा, एज इट इज कैच करना, एज इट इज, चाहे कान से चाहे उसे। 18 जनवरी का दिन विशेष क्यों है? 18 अर्थात गीता के 18 अध्याय, 18 अर्थात, 18 क्या क्या है? गीता के 18 अध्याय, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, और बालिग होना, करेक्ट, 18, और चाइनीज फिलोसॉफी में 18 अर्थात लकी नंबर है अकॉर्डिंग टू चाइनीज, और 18 अर्थात 18 अक्षयोनी सेना गीता में जो युद्ध चला कौरव पांडवों का, 11 इधर 7 इधर, 11 किसकी? कौरव की, पांडवों की, 7, 7 इधर 11 इधर, 18 अर्थात और भी कुछ है? 18 एनीथिंग, और भी कुछ है? हाँ 18 जनवरी का ही पूछ रहे,
उसी का तो पूछ रहे सुखदेव, हमेशा आगे करो।
18 क्या हो गया ना,
और आगे करो,
कहाँ थे? हिब्रू जीवन, हिब्रू भाषा में जीवन की, हिब्रू भाषा में जीवन के लिए शब्द चाहिए जिसका संख्यात्मक मान 18 होता है, इसी कारण यहूदी समाज में 18 या उसके गुणों में दान या धनराशि भेंट करने की परंपरा है, इसे दीर्घायु और शुभ आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। एक दूसरा, यहूदी में भी 18 विवाह का के लिए उपयुक्त है। रोम 18 संख्या रक्त संबंध से या निकट पारिवारिक संबंध का प्रतीक है। तो ये सारे 18 का अलग अलग जगह पर दिया हुआ है। तो 18 जनवरी को विशेष दिवस क्यों? क्योंकि यह स्मृति दिवस नहीं बल्कि क्या है, समर्थि दिवस। इस दिन ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावन हार बनकर बच्चों को करण हार बनाने का तिलक दिया है। यह दिन स्मृति के साथ समर्थि जीवन और विश्व सेवा का निमित्त बनने की प्रेरणा देता है। ये क्या है? स्मृति दिवस नहीं है, क्या है? समर्थि। समर्थि अर्थात शक्ति, समर्थि अर्थात शक्ति, तो शक्ति आनी चाहिए। शक्ति कैसे आएगी? केवल फूल मालाएं चढ़ाने से नहीं। किससे आएगी? केवल उसकी महिमा गाने से नहीं,
साधना से,
केवल उसकी भक्ति करने से नहीं, स्तंभ बनाने से नहीं, ना स्तंभ बनाने से, फूल माला चढ़ाने से। शायद हो सकता है कि अभी ब्रह्मा बाबा आ जाए तो ये कहे कि जितना हम फूल केवल मालाएं चढ़ाए, क्या वो खुश होगा उससे? शायद नहीं। तो बाहरी आडंबर से आत्मा खुश नहीं होती है। कब खुश होती है? जब वो करते हैं। केवल फूल चढ़ाओ, केवल आरती करो, केवल मालाएं जपो, उससे खुशी नहीं होती है। जो उसने किया, जैसा उसने किया वो करना। क्या किया उसने? करावनहार। ये शब्द सब कहां से आए हैं? करणहार, करावनहार, पीछे से मुरली में ये सारे शब्द कहां से आए हैं? सिख लिटरेचर, ये सब सिख लिटरेचर है, गुरु ग्रंथ साहिब से आए हुए हैं। कर्ता पुरुष, करतार, करणहार, करावनहार, और किसी भी लिटरेचर में ये शब्द निराकार, ये शब्द नहीं पाए जाते, केवल यहीं पर है ये। तो करावनहार वो कौन है? करावनहार। मैं कौन हूं? करणहार। तो सभी एक चित्र बनाएंगे, डायरी है ना सबके पास, बांसुरी का चित्र बनाएंगे, बजाने वाला वो बांसुरी मैं, ऊपर लिखेंगे वो करावनहार, मैं करणहार। बांसुरी का बनाओ या तो फिर बल्ब का बनाओ, हम बल्ब लाइट वो, या फिर दिए का बनाओ, दिया हम प्रकाश वो, सभी बनाएंगे। डायरी पेन पेपर हाथ में रहना चाहिए, नहीं है तो मोबाइल में बनाओ, मोबाइल में भी बना सकते। तो आज सारे दिन भर कौन सा अभ्यास करना है? मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। कराने वाला कौन है? वो है, मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है। किसके द्वारा करा रहा है? मेरे द्वारा। या तो पेन का पिक्चर बनाओ, पेन मैं, हाथ किसका है? उसका, उसने पकड़ के रखा है। या पेंट ब्रश का पिक्चर बनाओ, पेंट ब्रश मैं, चित्र बना रहा है वो। करावन हार बजा रहा है, मैं कौन हूं? बांसुरी, बांसुरी का चित्र। तो आज प्रैक्टिस कौन सी करनी है? ये वाली, मैं कौन हूं? निमित्त। मैं कौन हूं? चैनल। मैं कौन हूं? इंस्ट्रूमेंट। मैं कौन हूं? यंत्र। मैं कौन हूं? मशीन। मैं कौन हूं? करणहार। करणहार वो करावनहार। मैं कौन हूं? निमित्त। मैं कौन हूं? इंस्ट्रूमेंट। मैं कौन? चैनल। मैं कौन हूं? मीडियम। चैनल, मीडियम, मशीन, यंत्र, माध्यम, नल, माइक, टंकी और नल का भी चित्र बना सकते हैं। ऊपर टंकी, नीचे नल। तो 18 जनवरी केवल स्मृति दिवस नहीं है बल्कि समर्थि दिवस है। समर्थि अर्थात, समर्थि किससे आती है? आत्मा में। आत्मा पावरफुल कब बनती है? आत्मा पावरफुल किससे बनती है और कमजोर किससे बनती है? भगवान से कनेक्शन जोड़ा तो पावरफुल, और मनुष्यों से कनेक्शन जोड़ा तो आत्मा डिस्चार्ज होती है, इसको फोन उसको फोन आते हैं यहाँ पर भट्टी करने पर मोबाइल चालू रहता है, भट्टी में भी मोबाइल बजते रहता है, तो ये कैसी भट्टी चल रही है? भट्टी अर्थात टोटल साइलेंस, 4 days, 3 days, 7 days, एब्सोल्यूट साइलेंस, संसार से कट ऑफ, पति से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, बेटे से बात कर रहे हैं, बेटी से बात कर रहे हैं, दादा से, दादी से, माँ से, वीडियो कॉल कर रहे हैं, शांति स्तंभ दिखा रहे हैं, ये यहाँ शांति स्तंभ है, अभी हम शांति स्तंभ पर हैं,
हमारी साधना जारी है।
समर्थी अर्थात आत्मा में समर्थ किससे आएगी? शब्द से नहीं, मौन से। आत्मा में समर्थ किससे आएगी? बोल से शक्ति जाती है। यहां साधना जो है, तीन प्रकार की साधना है, एक तो नींद से मुक्ति, काम से मुक्ति और भोजन स्वाद। इसी दिन ब्रह्मा बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बनकर बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। यह दिन स्मृति के साथ समर्थ जीवन और विश्व सेवा का निमित्त बनने की प्रेरणा देता है। कितने सारे 18 जनवरी आए और चले गए, कहां चले गए? इसलिए तो आज की प्रैक्टिस कौन सी है? मैं निमित्त हूं, मैं करणहार हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, चैनल हूं, मीडियम हूं, यंत्र हूं, मशीन हूं, फ्लूट हूं, पेन हूं, लिखने वाला वो है, पेंट ब्रश हूं, मैं कौन हूं? दिया, जिसमें प्रकाश किसका है? उसका। बल्ब हूं, जिसमें लाइट किसकी है, करंट किसकी है? उसकी। तो ये सब आज का अभ्यास है। दूसरा प्रश्न, परमात्मा स्नेह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इधर से चालू करो, लास्ट से, मुरली से प्यार नहीं, इधर से एक 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 चालू करो फटाफट। नहीं नहीं, ये बताएंगे, उनको बुरा लगेगा, नहीं तो उनके पास कम से कम 10 पॉइंट है, आपने बता दी तो जल्दी। परमात्मा स्नेह की विशेषता, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। अरे परमात्मा स्नेह की कोई भी विशेषता नहीं है? नहीं है बोल रहे, जल्दी जल्दी। परमात्मा स्नेह की क्या विशेषता, क्या करता है ये? भगवान का प्यार क्या करता है? शक्ति भरता है। तो परमात्मा स्नेह अगर है तो शक्ति, अगर परमात्मा स्नेह नहीं है तो शक्ति कम, केवल इससे उससे 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 प्यार है। तो प्यार से प्यार है तो शक्ति आएगी। अगली विशेषता, नेक्स्ट, ऑन करो उसको। जो जिसके जैसे जिसके साथ रहता है वो धीरे धीरे वैसे बन जाता है, इसलिए देखा गया पति पत्नी धीरे धीरे एक जैसे दिखने लगते हैं कुछ सालों बाद, सभी नहीं बहन भाई जैसे, देखा गया है, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। लंबा समय जो साथ रहते 30-40 साल वो एक जैसे दिखने लगते हैं, सब नहीं। तो जो जिसके साथ रहता है वो उसके साथ जैसा हो जाता है। उस दिन दीपा बहन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, इमोशनल कंटेजियन, व्हाट इज इट? हम जब जिसके भी साथ रहते हैं उसके विचार हम अनकॉन्शियसली ले लेते हैं अपने आप, भीड़ में भारी सारी भीड़ जिधर जा रही है हम वैसा करेंगे। भीड़ अगर शुभ कार्य में जा रही है तो हम शुभ करेंगे, भीड़ अगर डिस्ट्रक्टिव कार्य में जा रही है तो हमें प्रेरणा आएगी विध्वंसकारी कर्म करने की, मॉब मेंटेलिटी उसको कहते हैं। तो जिससे हम मन से जुड़े हैं यहां पर मधुबन में, पर जुड़े हुए संसार से, किसी व्यक्ति से, बेटे से, बेटी से, उसकी याद में है तो हम यहां है नहीं। और क्या करता है परमात्मा स्नेह? भरपूर करता है, किससे? कौन से खजाने, कौन से रूहानियत? थोड़ा ग्राउंड लेवल की बातें करो, ये लेवल की, अभी की खुशी, खुशी मिलती है,
एनर्जी,
एनर्जी। और कुशल भाई, परमात्मा स्नेह क्या करता है?
कुशल बना,
शक्तिशाली। तीन लोगों ने बना दिया, कुछ और बनाओ अपना नहीं अपना, और ज्यादा बताओ कुशल बनाता है रमेश भाई। परमात्मा प्यार क्या कर देता है, कोई एक ऐसी बात बताओ जो किसी ने नहीं बताई। असंभव को संभव कर देता है, जो संसार जिसको समझता था ये हो ही नहीं सकता।
कंपोज्ड और स्टेबल करता है,
कंपोज कर देता है, स्टेबल स्थित प्रज्ञ योगी बना देता है, स्थिर कर देता है। संसार की हर चीज हमें डिस्टर्ब करती है, हर चीज डिस्टर्ब करती है, मोह को खत्म करता है, बंधन से मुक्त। और थोड़ा सा ये सारे शब्द हटा के कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग, वैराग, ईश्वरे अनुराग विषय विराग। संसार के प्रति आकर्षण कम कर देता है, संसार में हमेशा आकर्षण होता है, शरीर का आकर्षण होता है, भोजन का आकर्षण होता है, नींद का आकर्षण होता है,
नवीनता का संचार करता
है, नवीनता आ जाती है, परमात्मा प्रेम की क्रिएटिविटी आती है, दिस इज वेरी न्यू। नहीं तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी आती नहीं, वही वही करते रहते, सुबह उठते अमृत वेला करते, फिर मुरली में जाते, फिर मुरली सुनते, फिर आते, फिर खाना खाते, फिर काम करते, फिर याद करते, बीच बीच में नुमा शाम का योग करते, रात में ज्ञान की चर्चा करते, चार्ट लिखते और सोते, फिर उठते दूसरे दिन, फिर सुबह अमृत वेला करते, फिर मुरली सुनने जाते, फिर डायरी भरते पूरी, फिर आते, फिर याद में भोजन बनाते, फिर याद में भोजन खाते, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करते, फिर दोपहर में सोते, फिर काम करते, नुमा शाम का योग करते, और फिर रात में ज्ञान चर्चा करते होंगे और फिर सो जाते। इसे कहते हैं साधारण पुरुषार्थ, ये है साधारण पुरुषार्थ। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है, हाईएस्ट। तो परमात्मा स्नेह क्या करता है, क्रिएटिविटी लाता है,
खतरों को खिलाड़ी बनाता है,
खतरे में स्टेबल भी रखता है और खतरों को सामना करने की शक्ति
भी आती है।
नहीं तो व्यक्ति हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, एक्स्ट्रा काम मुझे कुछ देना नहीं। दीवाना किसका किसका दीवाना बनाता है, खुद उसका दीवाना बना देता है। संसार का दीवाना संसार के दीवानेपन से मुक्त करता है, एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं ना, आशिक माशुक। आज की साकार मुरली में भी है, माशुक केवल एक है, मेरे अतिरिक्त तो माशुक कोई है नहीं, केवल मैं ही माशुक हूं। इसलिए कोई मेल लवर नहीं बनाना या मेल फीमेल लवर नहीं बना देना, नहीं तो पतन।
नीला ड्रम।
परमात्मा ने आत्मा को सहज मेरा बाबा का अनुभव कराता है, समस्याओं को फेस करने की पावर आती है। व्यक्ति अकेला रह जाए फिर भी जब उसको लगता है फेथ है, निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है भीतर, तो उसको डर नहीं लगता। तो परमात्मा स्नेह निर्भय बनाता है, परमात्मा स्नेह असंभव को संभव बनाता है, परमात्मा स्नेह क्या कर देता है, दीवाना बना देता है, परमात्मा स्नेह क्रिएटिविटी लाता है, परमात्मा स्नेह शक्ति भरता है। एक 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 पॉइंट बताते जाओ। और क्या करता है, क्या करने की क्षमता, संसार एक्सेप्टेंस पावर देता है,
साक्षी दृष्टा
बनाता है, हम साक्षी बनते हैं, क्योंकि साक्षी की सबसे बड़ी साधना है, साक्षी की साधना चीजों को देखना। परंतु इस साक्षी अर्थात ये नहीं कि वहां अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम कुछ ना करें, ये साक्षी भाव नहीं है। साक्षी इसको नहीं कहा जाता है कि गलत हो रहा है और हम कुछ भी ना करें, परखने की शक्ति देता है, क्योंकि माइंड उससे क्या होता है, क्लियर होता है, शार्प होता है, तो हम चीजों को देख सकते, विवेक देता है, सबसे न्यारा बनाता है, डिटैच करता है। मनुष्य का स्वभाव है अटैचमेंट, मोबाइल को अटैच हो जाता है, व्यक्ति को अटैच होता है, पर्दे को अटैच होता है, घड़ी में अटैच होता है, फ्लावर पॉट में अटैच हो जाता है, हर चीज में अटैचमेंट होता है, कंघी में अटैचमेंट, रूमाल में अटैचमेंट, सॉक्स में अटैचमेंट, पर्स में अटैचमेंट, बैच में अटैचमेंट, हाँ पेन में अटैचमेंट। पेन में ना लोग नाम भी लिख के रखते, गुम हो जाता है, हमारे हॉस्पिटल में लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग आते हैं उनके पास पेन नहीं रहता है, सिस्टर को कहते पेन देना और लेके चले जाते अब उनको काम करना है 8 घंटा, उनके पास एक ही पेन रहता है, तो उसमें नाम लिख के रखते
वैराग्य के बीज उत्पन्न
करता, वैराग्य के बीज डालता है चेतना में मर्यादा, और अपने कर्तव्य को करना सिखाता है। साक्षी अर्थात ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर जी ने लिखा था, स्वतंत्रता हो गई उसके 7 साल के बाद ये कविता लिखी थी। क्या लिखा था कि दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर बाकी भारत में क्या हो रहा है? कुछ कुछ अमीर बन गए पर बाकी तो लोग अभी गरीबी है, उनका क्या? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, केवल जो शिकार कर रहा है केवल वही पाप का भागी नहीं है, जो चुपचाप भड़े बैठे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो समर, जो तटस्थ, वो भी समय लिखेगा उनके अपराध। जो अन्याय हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे और चुप है, वो भी क्या है? अपराधी है। दिल को सुकून, जल में कमल, तो हम भीगते नहीं, तो एक चित्र बनाएंगे कमल का और कमल की अलग अलग पंखुड़ियां। व्यर्थ से मुक्त, एक कमल का चित्र और उसमें एक एक पंखुड़ी को एक एक नाम दे दो। क्या नाम देंगे एक एक पंखुड़ी को? नहीं, अपने नाम दो, अपना परिवार, बेटे का नाम, बेटी का नाम, ये अलग अलग नाम दो, घर का नाम, ऑफिस का नाम, क्रिटिसिज्म, मोबाइल एक जगह, ये पंखुड़ी है उसकी, सभी निकालना है, सक्सेस का नाम एक जगह, फेलियर का नाम, बिना पेन पेंसिल बैठना ही नहीं है इधर, पेपर ले लो बाजू वाले से, जिनके पास नहीं है, बाजू वाले से पेपर लो अभी तुरंत तुरंत तुरंत, या तो मोबाइल में जो निकाल सकते हैं मोबाइल में स्केच निकाल सकते, बाजू वाले से पेपर लेना है, पेन नहीं है तो पेन भी मिल जाएगा। सुखदेव भाई पेन की व्यवस्था की है आपने? हाँ तो की है, सबको पेन दो जिनके पास पेन नहीं है, और डायरी दो, डायरी नहीं है तो पेपर दो। तो ये मैं हूं कमल, जिसमें मेरे ये रूप है, मेरे क्या क्या रूप है, मेरा डिपार्टमेंट है, एक पंखुड़ी में लिखो डिपार्टमेंट, एक पंखुड़ी में लिखो क्रिटिसिज्म हो रहा है उससे भी डिटैच, निंदा से भी डिटैच, प्रशंसा से भी डिटैच, सुख से भी डिटैच तो दुख से भी डिटैच, फायदे से भी डिटैच तो नुकसान से भी डिटैच। निखिलेश भाई थोड़ी क्लासेस लेंगे तो नहीं, कैसे भी निकालो। ट्रैफिक से भी डिटैच, ट्रैफिक के प्रति कितना मन में विरोध होता है, ये ट्रैफिक इतनी ज्यादा क्यों है, ये अच्छी नहीं है ट्रैफिक। आवाज से भी, आवाज पे से भी और साइलेंट दोनों से, कोई ज्यादा आवाज करते तो हम डिस्टर्ब होते हैं, वो भी डिस्टर्बेंस है। सबको पेन दे दो, लोटस और ये सब निकालना है। तो आज का दूसरा टारगेट क्या है, मुझे क्या बनना है? लोटस, कमल, भीगना नहीं है संसार के पानी से, अभीगा रहना है। क्या रहना है? अरे वाह बढ़िया बना दिया, ये है एडवांस्ड जो मोबाइल पे बना सकते हैं। तो पहला क्या बताया था? निमित्त, मैं कौन हूं? निमित्त, इससे अहंकार नहीं आएगा, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? मैंने किया। मनुष्य की बीमारी कौन सी है? मैंने किया, मैं करता हूं, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मैंने, मुझे आता है। पर तुमको प्रेरित किसने किया? प्रश्न वो है, अमृत वेले टचिंग हुई, पर टचिंग आई कहां से? तो वो भूल जाता है। अगला प्रश्न है, हाँ इसका उत्तर है, परमात्मा स्नेह आत्मा को सहज मेरा बाबा का अनुभव कराता है, यही स्नेह बच्चों को बाप के सर्व खजानों को मालिक बनाता है, तथा देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है, तब बाप के अतिरिक्त कोई भी आकर्षण शेष नहीं रहता, कोई भी आकर्षण शेष नहीं रहता। कौन से आकर्षण है संसार के, जो उन आत्माओं को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं जो लंबा समय से भगवान के यज्ञ में चल रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल। साधारण उत्तर नहीं देना है, हम बात कर रहे हैं उनकी, जैसे कोई 40 साल से, उसको कौन से आकर्षण खींच सकते हैं? जो यहां इस यज्ञ से बाहर लेके गए आत्माओं, कोई दबी हुई इच्छा, कोई इच्छा रह गई थी जो इतने साल तक चलती रही, और फिर कौन सा आकर्षण? दुनिया का आकर्षण, वो दुनिया को छोड़कर यहाँ आए थे, 40 साल ऐसे ही थोड़ी ना रहे इधर,
देह का।
हाँ, ईर्ष्या और द्वेष, साधनों का शायद आकर्षण इतना ना हो, साधन मिल ही जाते हैं यहाँ तो सबको, सब ज्ञान का घमंड, कोई एक ही कमजोरी है जिस पर काम ही नहीं किया, कोई एक ही कमी है हर एक व्यक्ति में, 10 साल हो गए होंगे, वो कमी ज्ञान के पहले से थी और अभी 15-10 साल हो गए, परंतु वो कमी वो क्या, वो ही है जो क्या थी, उस पर काम नहीं किया, बाकी सब पे काम किया। वो कमी थी ईर्ष्या की, पर काम किस पे किया, ब्रह्मचर्य पर, भोजन पर, बाकी सब पर काम किया, अमृत वेला पर काम किया 2 से 5, पर वो उस पे काम नहीं किया। जो कमी है उस पे स्पेसिफिकली हर व्यक्ति ने काम करना है। मेरी कमी, उनकी जो कमी है वो मेरी नहीं है, उसकी ब्रह्मचर्य की कमी है वो मेरी नहीं है, उसकी अमृत वेला पर उठता नहीं वो मेरी नहीं है, हमारी अपनी कमी है, हर एक को टेलर्ड कस्टमाइज्ड पुरुषार्थ करना है, टेलर्ड पुश। कोई एक ऐसा संस्कार है जो बचपन से चल रहा है, उस पे काम नहीं किया, बाकी बहुत अच्छा है सारा, जैसे कटाक्ष करने का स्वभाव है और वो कोई आत्मा को पता ही नहीं वो है करके, तो उसको उस पे काम करना पड़ेगा। फीलिंग, दुखी होना, उदास होना, नाराज होना, फील होना, डिस्टर्ब हो जाना, रोना, किसी ने कुछ कहा तुरंत उसको पकड़ना, अंदर ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना उसको, अंदर ही अंदर समा लेना और दुखी हो जाना, टच मी नॉट, छुई मुई, दर्द महल, रोनीता, तुलना, कंपेयर करना, ये तुलना बहुत बड़ा विष जैसा है, हम जैसे तुलना करते हैं ना, ये मेरे से आगे क्यों गया, तुलना नहीं करनी है, करुणा और सीखना है, कंपैरिजन नहीं, सीखना है, या उनसे प्रेरणा, उनसे गुण लेना है, लोगों से तुलना नहीं करनी है, क्या लेना है उनसे, गुण। अगर कोई आगे जा रहा है तो क्यों गया, उसमें कुछ तो होगा ना, तो उससे वो ले लो, खत्म। अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं तो हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे, इसलिए सफलता भी मुझ तक नहीं आएगी। तो बाप के अतिरिक्त तो कोई भी आकर्षण शेष नहीं रहे, पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि अभी बाबा के अतिरिक्त तो बहुत सारे आकर्षण है। अगर ये अवस्था होती तो इतना अच्छा योग होता। अगला प्रश्न, करणहार और करावनहार का रहस्य क्या है? सेवा में सफलता का मूल आधार है, मैं करणहार हूं, करावनहार करा रहा है। जब आत्मा स्वयं को केवल निमित्त समझती और वास्तविक करता परमात्मा को मानती है, तब देही अभिमान, देह अभिमान समाप्त हो जाता है, सेवा सहज सफल हो जाती है। अगला, ब्रह्मा बाप किन बच्चों को वाह बच्चे वाह कहते हैं? हमें हर व्यक्ति को वाह वाह की प्यास है, पर किसकी वाह की प्यास है? मनुष्यों के वाह की प्यास है कि हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें क्या मिले, वाह वाह मिले, लाइक्स मिले, क्या मिले, लाइक्स। वाह वाह के लिए मॉडर्न शब्द कौन सा है, लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा सब्सक्रिप्शन है मतलब जो तो सब्सक्रिप्शन की भूख है, सब्सक्रिप्शन के भिखारी है, लाइक्स के भिखारी है। स्टेटस, अब ये बार बार चेंज क्यों करते वो भी समझ नहीं आता है, डालते रहते हैं, मतलब उनको ये बताना है कि मैं इस समय यहां हूं, तुमको पता रहना चाहिए, हम इस समय कश्मीर में घूम रहे हैं और तुम नहीं घूम रहे हो, हम घूम रहे हैं तुम नहीं घूम रहे हो। तो उद्देश्य क्या है, प्रेरित करना या जलाना? इसीलिए कहा गया है सोशल मीडिया के वजह से सेल्फ स्टीम कम हो रहा है यूथ का। एक लेटेस्ट स्टडी आई है कल के जो करंट अफेयर्स थे उसमें एक वर्ड आया है, एक लाइन थी कि अमेरिका में अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूथ का, जो छोटे बच्चे हैं उनको, अगर उनको पूछा गया, एक सर्वे किया गया कि तुमको क्या बनना है, सब ने कहा हमको यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, उनको डॉक्टर इंजीनियर लॉयर नहीं बनना है, उनको सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना है। यह है लेटेस्ट, सोशल मीडिया में करियर बनाना है, उसके फॉलोअर्स इतने, उसके आधार पर वो योगा। और जैसे ही कोई यूट्यूब चैनल को खत्म कर देता है, स्ट्राइक दे देता है, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे मेरा बच्चा मर गया अगर किसी दूसरे चैनल ने स्ट्राइक दे दिया कि तुमने हमारा कंटेंट ले लिया, पहला स्ट्राइक ठीक है, दूसरा देते ही फिर अमेरिका का है ना यूट्यूब, तो वो लोग खारिज कर देते। आपने जो कुछ अपलोड किया अब तक सब गया, चैनल खलास। अगर फॉलोअर एकदम ही कम हो गए, 10 लाख फॉलोअर थे और कुछ हो गया और फॉलोअर कम, लोग आईसीयू में एडमिट हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। तो वाह वाह किसकी है इस दुनिया में, हमें नहीं नहीं, वाह वाह हम किसकी चाहते हैं, मना हमारी है खुशी किस पर है, दूसरों पर। भगवान के जो वीडियो है अव्यक्त बाप दादा के, उसमें भी डिसलाइक है, लोगों को पसंद नहीं आया, मतलब बाबा को कह रहे बाबा थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। रादर लोगों को ऐसी चीजें बनानी है आज जो एकदम सनसनीखेज हो, इसलिए लोग वर्स्ट मतलब ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ रहे कि जो हलचल पैदा कर दे, जिससे क्या बढ़ जाए, व्यूवर्स बढ़ जाए, लाइक्स बढ़ जाए। और ये करने के लिए क्या चाहिए फिर, कुछ तो ऐसी चीज जो बिल्कुल किसी ने नहीं की, उसमें फिर वल्गर कंटेंट आ जाएगा, सब कुछ डाल देंगे ताकि लोगों को एकदम आकर्षण हो जाए। हाँ मतलब उनको आज की ताजा खबर वो डालेंगे, इस व्यक्ति का काला सच, तो लोग देखेंगे अरे बाप रे इसको तो हम फॉलो करते हैं, ये तो हमारे गुरुजी है, उसका काला सच। तो उससे व्यूज क्या बढ़ जाएंगे, एकदम बढ़ जाएंगे तुरंत, क्योंकि लोग देखेंगे ना, लोग ऐसे थोड़ी नहीं देखते, बाप समान अव्यक्त स्थिति कैसे बनाई जाए, इस वीडियो को कितना लोग देखेंगे। हाँ ये ब्रह्मा कुमारिया जेल में, ब्रह्मा कुमारियों का पाखंड, ब्रह्मा कुमारियों का काला सच। हो सकता है जेल में सेवा करने गए हो। तो लोगों को ये चाहिए, ये दुनिया अभी हम वहां खड़े हैं इस एआई युग में, सोशल मीडिया के युग में, अभी पहले जैसा नहीं रहा। अभी चाहे कितनी भी अच्छी चीज आ जाए, कितनी भी अच्छी मूवी आ जाए, वो एक साल से ऊपर नहीं चलती, क्योंकि लोगों का टेस्ट बहुत फास्ट क्विक चेंज होता है। पहले एक ही मूवी चलती थी कितना साल, एक साल तक, दो साल तक, अभी नहीं है वैसा। अभी कुछ भी आ जाए अच्छे से अच्छा, इतने से अच्छा, अच्छे से अच्छा गीत आ जाए, तुरंत दूसरा आ जाता है। लोगों की मेमोरी जो है वो अभी ज्यादा नहीं। तो ये ऐसा है, ब्रह्मा बाप किन बच्चों को वाह वाह बच्चे कहते हैं, जो बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, जिनके मस्तक पर सेवा का फल सितारा चमक रहा है, ऐसे सेवाधारियों को ब्रह्मा बाप विशेष रूप से वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक देते। सितारे का फोटो बनाना है, मस्तक पर सितारा चमक रहा है, सोचो ये सितारा मैं हूं और वो क्या हो रहा है, चमक रहा है, एक स्टार का फोटो बनाएंगे पिक्चर। सफलता का सर्विस स्टार, उसको नाम देंगे सर्विस स्टार। और तो आज दिन में एक ऐसी सेवा करनी है जो गुप्त हो, क्या करना है आज का काम, एक ऐसी सेवा करनी है जो एब्सोल्युटली गुप्त हो, वो हो सकता है केवल हम किसी को सकाश देते, ये भी हो सकती है किसी को मदद कर दे, कोई कुछ कर रहा है, कुछ खाना खा रहा है उसको सर्व कर दे, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है हॉस्पिटल पहुंचा दे मदद, पर वो गुप्त मदद कैसी हो, गुप्त। ये एक कोई भी एक ऐसी सेवा करनी है आज, हाँ उसकी खुद भी चर्चा, और जिसको हम जिसकी सेवा, उसको भी लगे ही ना कि हमने उसकी मदद की, नहीं तो मदद तो करते पर उसको बार बार याद दिलाते हैं कि तुमको जो तुम्हारी जो मदद हुई है वो किसने हुई है, इसको भूलना मत। हाँ वो जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको भी बताना चले कि हमने उसकी सेवा की, मतलब उसको इतना वो फील हो अपनापन कि उसको लगे ही ना कि ये हमारी सेवा कर रहे हैं। हाँ आपको माफ किया, जैसे वो एक दिखाते एक पति पत्नी होते हैं, वो एक पार्टी में जाते हैं, तो पति वहां ना शराब पी लेता है, वो कभी पीता नहीं है, फर्स्ट टाइम पिया उसने, तो वो पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो आके फिर उसको घर पे आते हैं दोनों, फिर वो माफी मांगता है, वो कहती है ना 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 ये तुमको तो मैं माफ करती हूँ आज, मतलब ये जो भी किया ठीक है मैं तुमको माफ करती हूँ, पर जीवन भर वो उसको याद दिलाती है कि मैंने तुमको माफ किया था, बोलना मत ये मत भूलना तुमको माफ किसने किया था, मैंने तुमको माफ किया था। तो आज एक ऐसी सेवा करनी है कि जिसकी हम सेवा करें उसको भी पता ना चले कि हमने उसकी सेवा की। ठीक है, अगला प्रश्न, जीवन मुक्त स्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? ब्रह्मा स्वयं। जीवन मुक्त शब्द कहां से आया है? ये कोई खाली ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आया, बाबा से पहले भी शास्त्र उपनिषदों में आया, अद्वैत वेदांत में ये शब्द आया है, गीता में भी इस तरह के शब्द का प्रयोग है, जिसमें स्थित प्रज्ञ योगी अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए। जीवन मुक्त अर्थात जीवन में जीते हुए मुक्त, मतलब किससे मुक्त? विकारों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, भय से मुक्त। एक मेंटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बहुत सारे माइंड में, किसी किसी के प्रति कॉम्प्लेक्सेस, उन सब कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त। पास्ट की यादें होती है दर्दनाक, बचपन की, किसी ने हमको कुछ कहा उसको हमने पकड़ के रखा है, वो सबसे मुक्त। और बाबा प्रयोग करते हैं जीवन मुक्त किसके लिए? जीवन मुक्त अर्थात सुखदेव भाई, जीवन में रहते हुए किससे मुक्त? हाँ, ये सब जो कुछ फैला रखा है इनसे अनटच्ड। और जीवन मुक्त अर्थात डॉक्टर हारिका,
प्रभावित।
मोबाइल दो, ये दो मोबाइल नहीं, माइक दो, माइक कहाँ चला गया? जीवन मुक्त अर्थात,
जीवन में होते,
जीवन मुक्त अर्थात मुक्त पर, मुक्ति पर चिंतन करना है आज कि मैं मुक्त हूँ।
सब कुछ करते हुए चिंता और दुख से मुक्त,
चिंता से मुक्त, दुख से मुक्त, भय से मुक्त, प्रभाव से मुक्त, आकर्षण से मुक्त, हाँ, नींद से मुक्त,
कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे,
आकर्षण से हो गया और प्रभाव हो गया, कर मान अपमान वो प्रभाव हो गया ना, प्रभाव से मुक्त, फल से मुक्त, उसके फल का आकर्षण नहीं, और शरीर के भान से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त। ये चिंतन करना मात्र ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, केवल चिंतन करना कि मैं सब आकर्षणों से मुक्त हूं, तो भी व्यर्थ नेगेटिव। जीवन मुक्त कहा जाता है, देह भान से मुक्त, देह के पदार्थ से मुक्त, देह के धर्म, देह के पदार्थ, देह की इच्छा, देह की वासनाएं, देह के भोग, देह की दुनिया, देह के आकर्षण, देह की दुनिया, देह के धर्म, देह के पदार्थ, देह के भोग, देह के संस्कार, जो कुछ देह है, देह से रिलेटेड जो भी है, इस देह में रहते हुए भी इस देह से डिटैच रहने की साधना, उपराम रहने की साधना। तो इसमें दो प्रकार की साधना मुख्य है, एक तो मैं आत्मा इस श्वास को देख रही हूं, श्वास आ रहा है, श्वास रहा है, उसमें आत्मा को जोड़ देना, मैं आत्मा इस श्वास से देख रही हूं तो श्वास आ रहा है। दूसरा, इस पूरे देह में जहां जहां जो कुछ हो रहा है, अनुभव जो हो रहा है, उस अनुभव को साक्षी होकर देखना, ये एक साधना है। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या, हमारे पूरे शरीर में 24 घंटे कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो रहा है, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है, बाहर निकलता जाता है, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, उसको केवल देखना। यहां जैसे सुख अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु ये सुख कब तक रहेगा? थोड़ी देर, चला जाएगा। अर्थात जो सुख है वो भी दुखी है, और जो दुख है वो तो दुख है ही, तो दोनों ही अंततोगत्वा दुख ही है, हर संवेदना दुख ही है। ये अनुभव करना, अनुभव सुनने से नहीं, अनुभव, वो है साधना। तो जीवन मुक्त अर्थात किससे जीवन मुक्त होना है सबने बता दिया, पर कैसे, ये हर एक की अपनी एक साधना है। बाप समान बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? बाप समान बनने का अर्थ केवल गुण धारण करना नहीं, बल्कि इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनना, फरिश्ता स्थिति में रहना और जिम्मेदारियों के बीच भी न्यारा प्यारा रहना। बाप दादा ने बच्चों में कौन सी कमी देखी? बच्चों का लक्ष्य अच्छा है, होमवर्क भी करते, अनुभव भी करते, लेकिन सदा नहीं करते। बाप दादा चाहते कि कभी कभी समाप्त होकर सदा का संस्कार बन जाए। कोई भी एक चीज करना है उसके लिए क्या करना है? कमिटमेंट चाहिए। अगर कुछ करना है तो वी विल डू इट डेली, चाहे पर कुछ कुछ जैसे 10 दिन करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आज नहीं करूं, कोई भी चीज, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक दिन अच्छा ऐसा आता है कि कहते हैं आज नहीं करो, उसी दिन करना है। कारण बनते वो अलग, कारण बिना कारण बने, मन के ही कारण है, मन कहता है ना ना ना, कारण उसी, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो भी जिम ट्रेनर्स होते हैं, जो भी रनर्स होते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं, क्या उनको कभी कभी नहीं लगता है कि हम थोड़ा आज रेस्ट करें, क्या उठना है और भागना है? जो स्कूल एग्जाम की नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता नहीं कभी कि आज छोड़ो एक दिन छुट्टी करते, पिकनिक जाते? नहीं करते। तो ये एक दिन भी नहीं, कंसिस्टेंसी, प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कितना बहुत अच्छे से करते हो वो नहीं, अमृत वेला मैं बहुत अच्छा करता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना रोज करते हो, चार दिन बहुत कर लिया, जब भट्टी में आया इधर 2 बजे उठ के बैठे, उधर जाने के बाद कभी 4 कभी 4:15, हाँ दिन के 2 बजे उठते। तो सदा इस मुरली का मुख्य होमवर्क क्या है, हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जिससे कभी कभी बदल कर सदा बन जाए, यही इस मुरली का मुख्य पुरुषार्थ है। तो जो चीजें हम कभी कभी करते हैं उसको क्या करना है, सदा करनी है, अच्छी वाली चीज। जैसे मुरली चिंतन, ये एक दिन का नहीं, रोज हो। जैसे आज की मुरली है शिव मैं हूं निराकार, मैं हूं सुख स्वरूप, शिव भगवान उवाच। कल हम रात में चर्चा कर रहे थे शिव शब्द के कितने अर्थ है, शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात शिव शब्द का अर्थ, शिव अर्थात जीरो, पहला अर्थ है कल्याणकारी, दूसरा जीरो, तीसरा बीज, ये 3 मुख्य अर्थ है। पर इसके अलावा भी शास्त्रों में हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसमें ढेर सारे अर्थ दिए शिव के, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, ऋग्वेद में, अलग अलग धर्मों में शिव शब्द के अलग अलग है। किसी ने कहा शिव अर्थात परोपकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी, मंगलकारी, परो, शिव अर्थात शुद्ध, कहीं एक वेद में लिखा है शिव का मीनिंग है शुद्ध, द प्योर वन, स्टैटिस्टिक्स और ऑडिट में 0, बिंदी लगाओ 0, वो भी एक शिव है, बीच भी शिव को कहते। तो ऐसे दिस इज चिंतन, कि हम उसका और एक्सप्लोर करें अलग अलग। मन जीत जगत जीत का वास्तविक अर्थ क्या है, इस मुरली में एक मन के लिए बहुत अच्छी बात कही है, कौन सी है, नहीं नहीं नहीं, मन के लिए एक बहुत ही नई बात कही हुई है, कहाँ है, यस मुरली मन, हाँ लगाम वो ठीक है, नहीं एक और एक है मन को, हाँ मन जीते जगत जी, मन जो संकल्प करे, मन कहना अर्थात मालिक, मन का समय जितना समय, हाँ आत्मा का साथी है हमेशा, क्या कहा हुआ है, मन कौन है, गुलाम या मन अलग, इसमें कहा है मन साथी है, और वो लाइन कहाँ है पूरी, नहीं और एक है उससे साथी है, वो तो है ही, हाँ आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है, मन तो आत्मा का साथी है, एक तो ये है, और दूसरा है हाँ, अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डैश नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये एक साधना है कि 1 घंटा योग में बैठना है पर बिना हिले डुले। आज का एक वो कौन सा है, बिना हिलने डुले, हिलना नहीं है, बस एक बार बैठ गए जैसे अभी बैठे, जस्ट बैठे तो बिल्कुल हिलना नहीं, जैसा बैठे वैसे। अब ये हिलने के जो भी है क्या क्या कारण होते हैं, कहीं खुजली होती है, कुछ होता है, उसको साक्षी, वो संवेदना है, उस संवेदना को साक्षी होकर देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है। मच्छरों ने देश के सन्यासियों को बहुत सताया है द्वापर से, फैन लगा के बैठ जाओ कमरे में अगर बैठते हैं तो 1 घंटा एटलीस्ट, हाँ जानवर हमारे हिसाब किताब जानवरों से है। एक भाई था ना इधर हॉस्पिटल में, एक भाई जी, हाँ गाय, अभी वो 30 साल से घर नहीं गया था, और एक ही था, एक ही इच्छा थी कि मधुमन में शरीर छूटे, पर एक ही दिन घर गए, और घर उनकी जो गाय थी उसको लेके जा रहे थे, गाय ने मार दिया, ओम शांति,
बंसल जी उनका नाम,
मच्छर हमारा खून पीता है तो क्या हमने उसका पिया था क्या?
मारा होगा उसको, कुचला होगा उसको। कई लोग खाली मारते नहीं है, मारने के बाद ऐसे दबा दबा के उसको ये करते हैं, उससे हिंसक प्रवृत्ति का पता चलता है। इसलिए सबसे पहले मच्छर को कभी नहीं मारना, ये भी हिंसा है। उसको जैसे हमारी माता जी बचपन से हमेशा कहते हैं कि मच्छर को कभी नहीं मारना, उसको नहीं भगा देना और मारना नहीं। लोग मारते हैं, मारने से तृप्ति नहीं होती है। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है उसको, कैसे ऐसे बिना लाइसेंस का कोई अगर मिल जाए उसको तो ऐसे उसको स्क्रू करता है, वैसे इसको भी ऐसे ऐसे करते हैं लोग। हाँ तो योग से पहले मच्छरों को पहले सकाज दे दो, ये सही है।
नहीं हमने किया था कई बार शांति स्तंभ पर, ये 7:30 बजे के बाद जब अंधेरा ज्यादा तो मच्छर ज्यादा आते हैं, तो हमने की कुछ दिन के तो नहीं आते हैं फिर, तो मच्छर को सकाज दो क्योंकि हमारा हिसाब किताब तो रहा हुआ ना, उनसे माफी मांग लो पहले से,
माफी मांग लो। ठीक है, अपने आप को कवर करके रखो अच्छे से।
कहते कान में आके भूमो करता है तो उसको संगीत समझना चाहिए।
वो जब दूर होता है तो आवाज नहीं आती है संगीत की, जब यहाँ आता है ना तो संगीत ऐसे आवाज आती है। तो कुछ भी हो वो भी एक डिस्टर्बेंस है, मन डिस्टर्ब ना करे। इसमें ये लाइन देखिए आपने, अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब ना करे, जैसे मन कोई और है। तो सबसे बड़ी योग की साधना है मैं आत्मा और ये मन अलग, और हमेशा कहा है मन को गुलाम, यहाँ क्या कहा मन तो आत्मा का साथी पर मन है अलग, वो अलग है। इसके अंदर सब मन सब खेल रचते रहता है, कभी कल्पनाएं करता है, कभी एक्सपेक्टेशन करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उसको दिखाना है कि कैसे मैं महान हूं दूसरों से, कैसे मुझे बाबा ने ज्यादा प्यार किया, ज्यादा मेरी मदद की दूसरों से, ये भी उसका एक सूक्ष्म स्वभाव है।
1 घंटा अगर योग करना है तो मच्छरदानी लगा के किया जाए।
हाँ मच्छरदानी लगा के अंदर बैठ जाओ पूरा, मच्छरदानी लगा लो या वो ऑल आउट, या तो कमरा बंद करके रखो, दोपहर में करो 1 घंटा वाला। ये उधर बाबा के कमरे में मत करना, ज्यादा भीड़ होगी तो लोग उठा देंगे।
ये तो पर्सनल अनुभव करना,
ये पर्सनल अनुभव है अपने कमरे में करने के लिए। फैन चालू कर दो या तो करो जो भी है, पर 1 घंटा आज बैठना है अधिष्ठान में, ये अधिष्ठान की मुद्राएं बिना हिले डुले। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर कितना भी पैर दुखने दो, कितना भी हाथ दुखने दो, कुछ भी होने दो, मच्छर भी काट,
बीच में हिले तो फिर से 1 घंटा चालू।
वो जुनेद फकीर होता है, वो हज की यात्रा के लिए जा रहा होता है अपने 10-15 शिष्यों के साथ, और उन्होंने व्रत रखा होता है कि जब तक हम वहां पहुंचते नहीं हम उपवास करेंगे, हमारा उपवास है। जब हम हज में पहुंचेंगे उधर तब ही हम अपना उपवास तोड़ेंगे। और बीच में एक गांव में पहुंचते वो, और गांव में उनका एक अनन्य भक्त होता है जिसने उनके लिए भोजन बनाया है। अब ये शिष्य देखते देखते हमारे गुरुजी क्या करते हैं, और वो इतना भावना वाला है कि उसने अपना सब कुछ बेच बाज के भोजन बनाया है और सबके लिए बनाया। जब उसको पता चला कि जुनेद आ रहे तो वो, और जब पहुंचते हैं जुनेद तो वो देखता है उसके भक्ति भाव, कहता है ठीक है हम खाने को तैयार है। सारे शिष्य ऐसे ऐसे देखने लगते हैं अपने गुरु को, ये कैसे गुरु है अपना व्रत तोड़ रहे, और वो खुद भी खाते और अपने शिष्यों को भी कहते खाने के लिए। वो तो तब तो कुछ नहीं कहते बॉस के सामने, पर जब वहां से पूरा हो जाता है और जाने लगते हैं तो फिर प्रश्न पूछते थे कन्फ्रंट, ये आपने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तो वो कहते हैं वो तो उसकी भावना थी, वो उसकी भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो पता भी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और उसको तो ये भी नहीं पता हमने उपवास रखा हुआ है। तो उसकी भावना को मान देना। और रही बात हमारा उपवास, तो हमने ये 10 दिन किया था और टूट गया, अभी आज से चालू कर देंगे नया। जो अभी आपने बात की ना, हिले तो वहां से आगे का चालू कर देना। तो लास्ट दूसरा प्रश्न मुरली से, ये हो गया मुरली का होमवर्क हो गया। मनजीत, मन को जो संकल्प देते हो वही करो, अगर आत्मा मालिक बने और मन सेवक, आत्मा मालिक बने मन, जिससे अपने को मन जीत जिसके लिए संसार जीत। हाँ, मन को नियंत्रित करने की युक्ति क्या है? मन को शक्तियों की लगाम से चलाओ, जैसे कर्मेंद्रिय आज्ञा मानती है वैसे मन भी आत्मा की आज्ञा माने। मन मालिक नहीं, आत्मा का साथी है। तो क्या समझना है मन को भी, ये साथी है, उसके जबरदस्ती नहीं करना है उसके साथ, ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा नहीं, उसको थोड़ा प्यार से चलाना है, प्यार से समझाना है उसको, तो वो धीरे धीरे मानता है। ब्रह्मा बाप को स्नेह की कौन सी सौगात देनी है, सबसे बड़ी सौगात कौन सी है, मन जीत जगत जीत, व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर मन का मालिक बनना ही सच्ची स्नेह भेंट है। ये बाबा को ये जो बाकी की जो गिफ्ट्स है ना ये नहीं चाहिए, उसको फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट चाहिए। उसको कौन सी गिफ्ट अच्छी लगती है, ये स्थिति। बाइबल में एक स्टेटमेंट है कि यदि आपका एक व्यक्ति मर गया है, आप उसकी कब्र में जा रहे हो और उसको फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, जीसस क्राइस्ट ने कहा है परंतु उसके मन में आपके प्रति, आपके मन में द्वेष है, तो सबसे पहले घर जाओ, अपने गिफ्ट को बाजू में रखो, घर जाओ, या तो उससे माफी मांगो या उसे माफ करो और फिर आके उसको सौगात दो। मन में द्वेष है तो वो गिफ्ट वो स्वीकार नहीं होगी। व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मुख्य युक्ति क्या है, ढेर सारी युक्तियां हैं, कौन सी युक्ति है, मन की दिशा मोड़ देना है, रीडायरेक्शन। उसको जबरदस्ती नहीं करना, तुम ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो, ऐसे प्रश्न उसको पसंद नहीं है, उसको टॉपिक ही चेंज कर देना है, मार्ग ही बदल देना है, और उससे बात करना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए, उसको कुछ और काम में लगा देना, बिजी कर देना उसको। ब्रह्मा बाप के स्नेह को लोग कहते हैं काम विकार काम विकार काम विकार, जो व्यक्ति काम विकार से मुक्त है वो काम विकार पर बात ही नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य में स्थित है ना वो ब्रह्मचर्य की बातें ही नहीं करते वास्तव में, और जो भोजन के उसमें एकाग्रता में स्थिर है वो भी भोजन की बात नहीं करते। हाँ, दूसरों को सिखाना वो अलग बात है। तो जब हमारी बुद्धि वहीं गोल गोल घूमती रहती है ना, जैसे काम विकार, कोई सोचता है मैं काम विकार को कैसे छूटूं, उसके बारे में ढूंढूं, टाइप करूं, तो वो टाइप करेगा, ढूंढेगा और ढूंढते ढूंढते फिर फंस जाएगा। जिससे मुक्त होना है उसके बारे में ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते उसी में हम फंस जाते, ये भी एक ट्रिक, ये ट्रैप है। इसलिए मार्ग ही बदल दो, टोटल अलग मार्ग से चले जाओ, प्रकृति में चले जाओ, देखो कितना अच्छा मौसम है, एकांत में जाके बैठो, प्रकृति को देखो कितनी निर्विकार है, कितनी पवित्र है, ये पक्षियों की जो आवाजें आ रही है कितनी सुंदर आवाज है, इस आवाज पर फोकस करो तो मन अपने आप देह से ऊपर उठ जाएगा। ब्रह्म बाप के स्नेह को दिल से याद करो, साथ ही बाप के संबंध और प्राप्तियों को, या दो चीजें याद करनी है, संबंध और प्राप्तियां, रिलेशनशिप एंड अटेंडमेंट्स, क्या मिला है उसको फिर से रिवाइज करना है। वही जो रटे हुए हमारे जो पुराने पॉइंट्स है और पीडीएफ बना के रखे और शेयर किए उसको तो याद ही करना नहीं बिल्कुल जैसे हम कहते ना ये करो, तो हम क्या करते, पुराना अपना ढूंढते कि हमने तो इस पर चिंतन करके रखा था, वो नहीं, उसको हटाओ, नया चिंतन करना। मन का मालिक कौन है, बाप दादा ने स्पष्ट किया, आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है, मन आत्मा का साथी है। मन को कैसे चलाना चाहिए, मन को परिस्थितियों से नहीं आत्मा के ऑर्डर से चलाना चाहिए, जितना देर जिस संकल्प में लगाना है उस में वो स्थिर हो जाए। संबंध और प्राप्तियां याद करने का क्या लाभ, जब पुरुषार्थ कमजोर पड़े, ये होता है हर एक के जीवन, कभी कभी पुरुषार्थ क्या हो जाता है, कमजोर। अभी अभी एक कोई आया था, वो कह रही थी एकदम ही कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि बाबा आउट माया इन, ऐसा हो गया, पुरुषार्थ करते करते ऐसा हो जाता है, एक महीना पूरा पुरुषार्थ से मुक्त हो गए, बाबा से मुक्त, पुरुषार्थ से मुक्त, फिर अभी थोड़ी सी वापस जागृति आती है। हाँ, ये तो ऐसा जब हो जाए तो तुरंत अपने आप को बताना है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। जब पुरुषार्थ कमजोर पड़े तो बाप के संबंध और बाप की प्राप्ति है, मेरा क्या संबंध है, एकांत में जाओ और बैठो, तब उस समय बहुत ज्यादा ना क्लासेस सुननी है ना करानी है ना कुछ करना है, वो जो सब रूटीन में जो करते हैं ना उन सब से हट के एकांत में बैठ के। तो मेरा बाबा कहने का वास्तविक अर्थ क्या है, स्वयं को बाप का सिकिलदा बच्चा अनुभव करना। प्रत्येक जोन को बाप दादा ने कौन सा कार्य दिया है, हर जोन अपनी रिजल्ट दे, व्यर्थ संकल्प नहीं, मन को का जो विषय दिया है वह किया या नहीं, इसका अभ्यास करने आज्ञाकारी। तो ये हो गए, ये 21 प्रश्न थे। लास्ट प्रश्न, इस मुरली का मुख्य संदेश क्या है, जीवन में रहते जीवन मुक्त, ये हमने देखा कि आज क्या करना है, स्वयं को मुक्त करना है। तो मुक्ति के लिए एक तो परम धाम का योग कि मैं मुक्ति धाम में हूं, या तो मैं निर्बंधन हूं, पक्षियों को देखो कैसे उड़ रहे, मैं इनके जैसा उड़ रहा हूं, अनुभव करना है, स्थूल स्थूल चीजों को देखते हो ये कैसे मुक्त है, मुझे मुक्त होना है, और फिर जो बंधन में है ना उनको देखो, जो बंधन में रहते हैं वो कैसे कैद में है, कैद का एक चित्र देखो, ये पक्षी कहती है अंदर है उसको कैसे अनुभव होता है। हाँ देखो कैसे जबरदस्त छलांग मारता है बंदर इधर से उधर, उसको कोई बंधन ही नहीं है, मैं मुक्त हूं। एक दूसरा स्वयं को निमित्त करना, आज क्या समझना है, मैं इंस्ट्रूमेंट टू एक ऐसी सेवा करनी है जो बिना नाम के, बस चुपचाप सेवा करके आ जाओ, नाम नहीं छोड़ना है वहां पर, किसी को मदद कर दो और आ जाओ। जैसे वहां से यहां तक लोग आते हैं ना, बैग होती है, सामान होती है, मदद कर दो छोड़ के चले जाओ, मन जीत जगत जीत मन कर। तो एक घंटा क्या करना है, आज बैठना है बिना हिले, मन डिस्टर्ब ना करे, मन में विचार आने दो, आए तो साक्षी होकर देखो, शरीर को साक्षी होकर, श्वास को साक्षी होकर देखना, संवेदना को साक्षी होकर देखना, विचार और भावनाएं, ये चार चीजों को साक्षी होकर देखना है। विचार आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, जाने दो। अगला, ब्रह्मा बाप ने स्नेह के जीवन की शक्ति, ब्रह्मा बाप के स्नेह को जीवन की शक्ति बनाओ, और लास्ट में मुरली से प्यार। मुरली से प्यार के लिए एक तो ये मुरली पढ़नी है, और आज की जो साकार मुरली है उसका एक बार अच्छे से अध्ययन करना है, उसमें क्या क्या शब्द है, कौन से नए शब्द है, क्या क्या ऐसा है कि जो चिंतन जिसके लिए आवश्यक है, तो ये आज का कार्य है। तो ऐसे हर दिन 21 सेशन रहेंगे, ये आज का एक सेशन रहा, इसमें ये जो 21 प्रश्न थे बिना उत्तर के ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, आपको उत्तर लिखने, मुरली एक बार पढ़ लो और फिर सोच के उत्तर लिखो, जरूरी नहीं है कि उत्तर मुरली से ही आए, अपने चिंतन से उत्तर आ जाए, क्योंकि मुरलियां रिपीट होती रहती है, 18 जनवरी कितने सारे हो गए, सेम मुरलियां होती है लगभग कुछ कुछ, तो वो उत्तर लिखने हैं। तो ये है आज का कार्य। ओम शांति।
चिंतन चिंतन कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन, मन की आंखें खोल कर मनन, चेतना के द्वार खोल कर गमन। चिंतन 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 कर चिंतन,
चिंतन चिंतन करने की एक सबसे बेस्ट विधि है लेटे लेटे, लेट जाने का, आंखें बंद करने का और सोचने का ये बहुत अच्छा विधि है। जैसे अभी यहाँ जो कुछ सुना ना, जो हम करते हैं बताते हैं, अगर जो कोई क्लास है तो आधा घंटा हम लेट जाते हैं, बहुत सारी क्लास नींद में ही चिंतन करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से चिंतन होता है, पर सो नहीं जाना, बस वो देखना है लेटे 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 एकदम रिलैक्स, और फिर सोचना यहाँ क्या क्या था, जीवन मुक्त था, क्या क्या था, मुरली से प्यार का था, और क्या था, ऐसे सोचना रिलैक्स।
दिन भर मैं लेटे रहता हूँ, कहीं मैं विष्णु का अवतार तो नहीं हूँ
ये एक जोक आया था बीच में, दिन भर लेटे रहता हूँ, कहीं मैं विष्णु का अवतार तो नहीं ओम शांति।
स्वरूप का चिंतन कर, स्वयं का दर्शन, स्वमान का चिंतन कर, स्वयं का अभिनंदन, स्वगुणों का चिंतन कर, स्वयं में संवर्धन, स्वशक्तियों का चिंतन कर, जीवन में धारण, स्वधर्म का चिंतन कर, पल पल स्मरण, स्वलक्ष्य का चिंतन कर, स्वयं को समर्पण। चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन। चिंतन कर, स्वयं का अनुशासन, स्वपरिवर्तन का चिंतन, तोड़ पुरानी बंधन, स्वाधिकार का चिंतन, देख स्वयं का प्रशासन, स्वप्राप्ति का चिंतन कर, उनका रक्षण, स्वज्ञान का चिंतन, बना अपना योगी जीवन। चिंतन 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 कर चिंतन।
विजय का उद्धारण स्व कल्याण का चिंतन कर सफल हर साधन स्व सेवा का चिंतन बढ़ा आगे अपने चरण स्व अनुभूति का चिंतन कर मैं का विसर्जन स्व कमियों का चिंतन कर कारण का निवारण स्व पुरुषार्थ का चिंतन भस्म कर माया के व्यसन चिंतन 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 कर चिंतन चिंतन पावन हो सृष्टि का कण कण स्व अलंकार का चिंतन हर दिन हो नूतन चयन स्व विशेषताओं का चिंतन हो चिंतन मंगलम मन की आंखें खोल कर मनन चेतना के द्वार खोल कर गमन चिंतन 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 कर चिंतन शिव बाबा का स्मरण